ओम शांति। तो जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, कभी बारिश आ रही है कभी नहीं आ रही है, तो आज हमारा टॉपिक है स्पिरिचुअल रेनकोट। क्योंकि मॉनसून चल रहा है तो हमने सोचा कुछ ऐसा टॉपिक ले। तो सबसे पहले स्पिरिचुअल रेनकोट यानी कि आध्यात्मिक रेनकोट। रेनकोट तो सबको पता है, तो सबसे पहले तो रेनकोट की थोड़ी हिस्ट्री सुनेंगे। स्कॉटिश में एक केमिस्ट था जिनका नाम था चार्ल्स मैकिंटोश। उन्होंने रेनकोट को बनाया 1824 में, और बाद में इंडिया में उसका नाम दिया गया इंडियन रबर क्लॉथ। और जो रेनकोट होता है उसमें अलग अलग मटेरियल यूज किए जाते हैं, जैसे कि नायलॉन, पॉलिएस्टर, कॉटन, फाइबर, ऐसे अलग अलग मटेरियल से रेनकोट को बनाया जाता है। तो इतने सारे मटेरियल से रेनकोट बनता है। सबसे पहला जो रेनकोट बना था वो था पोंचो। पोंचो समझ में आता है, जैसे कि उसको पूरा खाली होता है, जैसे हम जो रेनकोट पहनते हैं उसमें हुड होता है ना, कैप होता है और ऐसे बटन्स होते हैं। तो जो पोंचो सबसे पहला रेनकोट जो बना था उसमें कोई बटन्स नहीं होते, वो ऐसे ही पहन लेना होता है खाली खाली सा, उसमें हवा जाती है। तो जो ट्रैकिंग पे जाते हैं ना वो लोग पोंचोस पहनते हैं। फिर उसके बाद जो लोग सागर पर सेवा करते हैं वो लोगों के लिए एक ऑयल क्लॉथ जैसा रेनकोट बनाया गया। फिर उसके बाद मैकिंटोश, और फिर अलग अलग प्रकार के रेनकोट्स आए अलग अलग डिजाइन्स में। अब जो रेनकोट होता है वो किस चीज से हमको प्रोटेक्ट करता है? बारिश से। बारिश से बचाता है हमको, और हमको वार्म रखता है, गर्म रखता है, हमको ड्राई रखता है रेनकोट, है ना। इसी तरह से बहुत तूफानी बारिश हो रही है, बहुत हवा चल रही है, तो हवा से भी बचाता है रेनकोट हमको। और जैसे कि मिट्टी का जो पानी होता है ना, हम जब छाता लेके खड़े होते हैं, बारिश कम कम भी गिर रही होती है, परंतु जो कीचड़ होता है वो हमारे कपड़ों को खराब कर देता है। लेकिन जो रेनकोट होता है वो इन सब चीजों से भी बचाता है, यानी कि मिट्टी का पानी, गंदा पानी, उससे हमको बचाता है। और जब हम रेनकोट पहनते हैं तो हमारे दोनों हाथ फ्री हो जाते हैं, है ना। जब हम छाता लेते हैं तो कुछ ना कुछ उठा हाथ में छाता पकड़ना पड़ता है, लेकिन रेनकोट के टाइम हमारे दोनों हाथ फ्री हो जाते हैं। और एक अच्छी बात है रेनकोट की कि रेनकोट, छाता हमारा चोरी हो सकता है लेकिन रेनकोट चोरी नहीं होता, है ना। रेनकोट मोस्टली हम पहन के ही बैठते जहां पे जाते हैं, और निकाल के बाहर रख भी देंगे तो कोई गलती से लेके नहीं जाता हमारा रेनकोट। बट छाता में ये पॉसिबिलिटी होती है कि छाता गुम हो सकता है। तो ये कुछ रेनकोट के बारे में देखा। तो अभी स्पिरिचुअल रेनकोट क्या है? तो स्पिरिचुअल रेनकोट एक इनविजिबल रेनकोट है जो दिखता नहीं है इन आंखों से हमको, लेकिन ये जो कॉस्ट्यूम है, ये जो रेनकोट है, ये हमने पूरे दिन भर पहन के रखा है, या हमको ये दिन भर पहन के रखना है। ये एक शक्ति है जो हमको दिन भर पहन के रखनी है, इसको स्पिरिचुअल रेनकोट बोलेंगे। और जैसे कि अभी हमने देखा कि बारिश से बचाता है और तूफान से बचाता है, मिट्टी से बचाता है, तो आध्यात्मिकता में क्या होता है? जैसे कि नेगेटिविटी, नेगेटिव वाइब्रेशंस, या तो पांच विकार, माया का वार, परचिंतन, परदर्शन, व्यर्थ संकल्प आना, उल्टे सुलटे संकल्प आना, सस्पिशियसनेस, डाउट होना, ये सारी चीजें जो है ये वर्षा है हमारे इस स्पिरिचुअल रेनकोट पे। और दिन भर हमको इस रेनकोट को उससे बचाना है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि वो रेनकोट में मटेरियल यूज किया जाता है नायलॉन, पॉलिएस्टर, कॉटन, है ना। तो इस रेनकोट का, स्पिरिचुअल रेनकोट का मटेरियल क्या हो सकता है? स्पिरिचुअल रेनकोट मटेरियल कौन से मटेरियल से बन सकता है हमारे? तो जैसे कि चमकीला फरिश्ता ड्रेस, मटेरियल क्या है उसका? दिव्य गुण शक्ति, हाँ, मन बुद्धि संस्कार, अच्छा, और आत्मिक दृष्टि, हाँ, ज्ञान का पॉइंट्स। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, तो हमारे स्पिरिचुअल रेनकोट का मटेरियल है ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ज्ञान। तो रोज की जो हमारी मुरली है ना, जो रोज की मुरली हमको मिलती है वो हमारा स्पिरिचुअल रेनकोट एवरीडे बनाती है। सुबह सुबह रोज की जो मुरली है उसकी हमको चर्निंग करनी है, उसके ऊपर हमको चिंतन करना है और तब जाके हमारा ये रेनकोट तैयार होता है। तो जैसे आज की मुरली में बाबा ने पढ़ाई के लिए कहा ना कि अगर दुख सुख हो, निंदा स्तुति हो, फिर भी पढ़ाई को नहीं छोड़ना है ना। कई ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई को छोड़ देते हैं, माया ऐसी है जो गला घोट देती है, मुंह मोड़ देती है, बेहोश कर देती है ना। तो माया हमारे स्पिरिचुअल रेनकोट को खराब करने की इतनी कोशिश करती है। तो जैसे आज की मुरली की पॉइंट्स रिवाइज करें तो बाबा ने इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स बोली कि देखो, जो अगर महामूर्ख भी देखना है आपको तो कहाँ देखो, यहाँ आके देखो महामूर्ख भी। और बाबा ने आज की मुरली में एक और पॉइंट कही कि अमृत वेला सवेरे सवेरे विचार सागर मंथन करो। बाबा को पता है कि सारा दिन हमारे पास टाइम नहीं है, बाबा ने कहा दिन में तो आपको टाइम नहीं मिलता, इसलिए सवेरे सवेरे विचार सागर मंथन करना है। तो ज्ञान का जो मटेरियल है स्पिरिचुअल रेनकोट का, उसको शक्तिशाली बनाने के लिए सवेरे सवेरे अमृत वेला के बाद या मुरली क्लास के पहले या मुरली के बाद कम से कम 15 मिनट अपने आप को देके चिंतन करना है। कोई ना कोई पॉइंट उठा के मुरली का उस पर चिंतन करना है। पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे लास्ट वीक मुरली में एक पॉइंट था, भोजन ना खाकर दिन रात जाग कर मर झुक कर क्या करना है, पढ़ाई में लग जाना है ना। तो बाबा कितने अच्छे पॉइंट्स बोलता है, कितनी इम्पोर्टेंस देता है इस पढ़ाई को। तो इसीलिए हमको भी बहुत इस पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देना है। तो एवरीडे हम सुबह सुबह 15 मिनट कम से कम इस पे दे सकते हैं कि हाँ आज मुझे क्या टॉपिक पे चिंतन करना है, या कोई भी एक टॉपिक ले लो और उस पे पूरा दिन भर चिंतन करो, पूरा दिन भर ज्ञान से कनेक्टेड रहो। कई भाई बहनों को आपने देखा होगा कि कान में ईयरफोन लगा के ही रखते हैं और पूरा दिन भर कुछ ना कुछ ज्ञान सुनते ही रहते हैं, ताकि व्यर्थ ना आए, ताकि ये जो माया की बारिश है वो हमारे स्पिरिचुअल रेनकोट को खराब ना करे। इसलिए दिन भर कोई ना कोई क्लासेस सुनते हैं, या तो मुरली क्लास सुनते हैं, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल लेक्चर सुनते रहते हैं। तो इस तरह से कनेक्टेड रहना है। मुरली हम मॉर्निंग में जब सुन लेते हैं उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते जैसे कि वो बुद्धि से निकलती जाती है ना, देखा होगा ना, मुरली क्लास से हम नीचे आते हैं, नाश्ता करते हैं और जब सेवा पे जाते हैं तब तक मुरली आधी गई। तो इसीलिए एक प्रयोग कर सकते हैं कि जब भी हम खाने बैठे है ना, तीन बार तो बैठते हैं ये ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के लिए, तो थाली जब सामने आती है तो बाबा को याद करते हैं हम और दृष्टि देते हैं, उसी समय एटलीस्ट दो पॉइंट मुरली के याद करना कि आज की मुरली में बाबा ने ऐसे कौन से दो पॉइंट बोले, बस याद करने की कोशिश करना। बुद्धि को थोड़ा खींचना पड़ेगा फिर याद आएंगे। फिर वापस लंच के टाइम पर दो पॉइंट याद करना, प्लेट सामने आ गई, दृष्टि देना, बाबा को याद करना, बाबा को खिलाना, और दो पॉइंट याद करना, फिर भोजन को स्वीकार करना। ऐसे ही डिनर के टाइम पे भी कर सकते हैं। इसी तरह से जब ट्रैफिक कंट्रोल बजता है, जब हम नए नए ज्ञान में आए थे तो सब कहते थे हाँ जब ट्रैफिक कंट्रोल बजता है ना 3 मिनट अशरीरीपन का अभ्यास करना है, पर तब तो इतना अभ्यास था नहीं, हमको लगता था 3 मिनट में क्या करना है ऐसे। तो कोई बहन ने हमको बोला कि 3 मिनट में मुरली के सब पॉइंट्स रिवाइज करना अपने माइंड में। तो जब ट्रैफिक कंट्रोल भी बचता है और हम बहुत ज्यादा योग करने में नहीं उस टाइम पे है, तो उस टाइम पे हम मुरली के पॉइंट्स याद कर सकते हैं कि आज की मुरली में ऐसे कौन से 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, या आज की मुरली का कौन सा स्लोगन था, तो वो कर सकते हैं। तो ये है जैसे कि ज्ञान का हमारा स्पिरिचुअल रेनकोट, इसलिए मुरली बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से अव्यक्त मुरली भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारी रात्रि क्लास में संडे की जो मुरली होती है उसका एक पैराग्राफ मंडे से चालू करते हैं, मंडे को एक पैराग्राफ, ट्यूसडे को, वेडनेसडे, ऐसे सैटरडे तक हम संडे की मुरली को टारगेट रखते हैं खत्म करने का। तो अव्यक्त मुरली को भी एक एक पैराग्राफ भी अगर हम रोज ले लें और उस पर चिंतन करें तो बहुत अच्छा हो सकता है ना। तो अव्यक्त मुरली, या तो फिर अपने बेड के पास आप एक मुरली रख सकते हो और फिर उसको रिवाइज करना, अव्यक्त मुरली की बुक रखना और उसके ऊपर रिवाइज करना। तो ये जैसे कि हमारा ज्ञान का स्पिरिचुअल इनपुट। सेकेंड है योग। याद। सुबह सुबह जब हम बाबा के सामने बैठते हैं, है ना, बाबा से दृष्टि लेते हैं, तो बाबा ने कहा है अमृत वेले बाबा से 5 तिलक ले लो, कि आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, बाबा बिंदी और जामावी बिंदी, है ना। फिर विजय का तिलक लेते हैं हम बाबा से, जन्म सिद्ध अधिकार है तुम्हारा, ये ब्राह्मण जीवन है तुम्हारा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा ने कोई व्यक्त मुरली में ये कहा है कि ये 5 तिलक रोज बाबा से सवेरे सवेरे लेने, तो ये जैसे कि हमारा रेनकोट तैयार कर रहा है सुबह सुबह, बाबा से पावरफुल दृष्टि लेके, बाबा से प्योरिटी की किरणें लेके। ये तो हम सब करते हैं मॉर्निंग में अमृत वेला। अब बात आती है कि स्पिरिचुअल रेनकोट को दिन भर की माया की बारिश से कैसे बचा के रखे, है ना। तो उसी तरह से हमको कर्म योग में भी, कर्म में भी योग को लाना है, तो कैसे हम उसको याद करने की कोशिश करें। तो सब सेवा में जाते हैं, कुछ ना कुछ टाइम तो मिलता है। बाबा ने एक मुरली में कहा ना कि ऐसे नहीं है कि सारा टाइम आप बुद्धि से बिजी हो, ऐसे भी टाइम मिलता है बीच में जहाँ बुद्धि से आपको सेवा नहीं करनी। जैसे अगर माताएं रोटी बना रही है, तो रोटी बनाने में कोई बुद्धि तो यूज नहीं कर रहे हम वहां पर, तो उस समय हम रोटी बेलते टाइम पे मैं 5 स्वरूप का अभ्यास कर सकते हैं, या तो मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, है ना। ऐसे कोई अभ्यास लेते हुए अपना कर्म करना है। जैसे हम हॉस्पिटल में सेवा करते हैं, तो 2 पेशेंट के बीच में, अगर हमारे पास बहुत पेशेंट्स है, तो 2 पेशेंट के बीच में सिर्फ 10 सेकंड मिलते हैं हमको, तो उस 10 सेकंड में कुछ ना कुछ ऐसा करना होता है कि नेक्स्ट पेशेंट जो इतनी नेगेटिव एनर्जी लेके आएगा उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। तो स्वमान को याद करना कर्म के टाइम, उस तरह से हम अपना ये योग के द्वारा स्पिरिचुअल रेनकोट को तैयार कर सकते हैं। हम मधुबन में हैं तो इसका लाभ और ले सकते हैं। जो भाई बहने बाहर है, है ना, जो मधुबन के बाहर रहते हैं, आप लोगों को पता होगा, आप लोग सेवा में ही आए हो, कई भाई बहने तो 8-8:30 बजे घर पहुंचते हैं, फिर डिनर बनाते हैं, फिर खाते हैं, लेकिन हमको तो शाम को भी यहाँ पे योग करने का टाइम मिलता है, तो उसको भी मिस नहीं करना है, उसका भी पूरा पूरा लाभ उठाना है। तब जाके मॉर्निंग में जो हमने रेनकोट बनाया, दिन भर हमने उसकी पालना की, और शाम को भी हम बाबा की याद से उसको शक्तिशाली बनाएंगे। तो ये हो गया योग। तीसरा मटेरियल है स्पिरिचुअल रेनकोट का, धारणाएं। हमारी धारणाएं जो होती है ना, वो हमारी स्पिरिचुअलिटी को जैसे रिफ्लेक्ट करती है, दूसरों को बताते हाँ ये अलग है, ये कोई अलग लोग है। हमारे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर आते हैं, हमने माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, तो उन्होंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया था वहां पे। उनको पूछा गया कि आपके पास लोग आकर ज्ञान सुनते हैं क्या, जब से आप ज्ञान में आए हो, आप डॉक्टर हो, तो कोई आपके पास आता है कोर्स करने को। तो उन्होंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो एक दिन बैंक में गए थे और कुछ पैसे डिपॉजिट करने थे उनको, तो वो लिख रहे थे, तो एक आदमी आया, बहुत घाई घाई में ऐसे आ गया और कहा कि पेन दो। तो उन्होंने पेन दे दी और उन्होंने वो भरा अपना, और पेन ऐसे ही छोड़ा, वो नहीं थैंक यू नहीं कुछ भी, और अपना काम करके चला गया। और ये सर ने पेन उठाई और अपना काम करने लगे, कोई एक्सप्रेशन में चेंज नहीं। वरना अगर हमारे पास कोई पेन लेने आता तो हम बोलेंगे ना, हम भी तो लिख रहे रुको, है ना, नॉर्मल रिएक्शन ये होता है। और यही चीज एक बैंक का व्यक्ति दूर से बैठ के देख रहा था, ठीक है। और नेक्स्ट डे वो सेंटर पर आया, उसने कोर्स किया और उसने कहा कि मैंने ये चीज देखकर मैं आया हूँ आज सेंटर पर। तो ये धारणाएं हैं जो दिखती है, है ना, और इसी से लोग इतने प्रभावित होते हैं और लोग इतने खुश होते हैं। एक और डॉक्टर हमारे पास आते हैं, वो कहीं दूर एक हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि एक टाइम एक सेंटर की सेवा थी कहीं सी हॉल में, और भाई बहनों ने शाम को ही सफाई की थी क्योंकि बहुत बारिश थी और चले गए, और नेक्स्ट डे जब आए तो देखा कि पूरा गंदगी था पूरा, और सब खड़े हो गए देख के कि अब क्या करना है। लेकिन उनमें से जो ये व्यक्ति थे जो इतने बड़े डायरेक्टर है हॉस्पिटल के, उन्होंने झाड़ू उठाई और झाड़ू उठा के साफ करने लगे, तो उनको देख के फिर दूसरे भाई बहने भी सफाई करने लगे, है ना। तो ये निर्माणता का गुण है जो दूसरों को दिख रहा है। उन्होंने बोला कि हमको दे दो झाड़ू, बोला नहीं नहीं ये तो मेरी वाली है, आप दूसरी लो। तो इस तरह से किस तरह से हमारे नेचर में वो आनी चाहिए, हमारी पर्सनालिटी में वो आनी चाहिए कि ये हमारा रेनकोट है। जैसे आप लोग यहाँ पे रहते हो तो नक्की पे जाते होंगे ना, तो जब लकी पे भी हम शेयर करते जाके तो दूसरे हमको देखते हैं उस टाइम पर, तो बहुत अटेंशन रहना चाहिए वो टाइम पे। वो टाइम पे हम जोर जोर से हंसी मजाक, जोर जोर से हंसते हुए, ताली मारते हुए, मजाक करते हुए ऐसे नहीं जा सकते हम, क्योंकि हम ब्रह्मा कुमारीज को रिप्रेजेंट करते हैं ना, हम बाबा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे हमारे आचरण कैसे होने चाहिए, हमारे पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, वह टाइम कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें धारणाएं। तो हमारी धारणाएं ये हमारा स्पिरिचुअल रेनकोट तैयार करती है। कोई भाई एक दिन एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे मधुबन में, कोई शिविर में कोई भाई बहन बाहर से आए थे, नॉन बीकेस थे, वो दोनों बैठ के चाय पी रहे थे और वो चाय लेके आए और उन्होंने कहा कि चाय फीकी है ना, तो एक मधुबन निवासी बाजू में बैठे थे, ठीक है। तो उन्होंने ये बात सुनी, वो उठे, वो बुजुर्ग मधुबन निवासी जो थे वो उठे, उन्होंने एक कटोरी ली, उसमें शक्कर डाली और उनको लाके दी और वहां से चले गए। वो दोनों इतने खुश हो गए इस बात को देख के, ये किसी भाई ने हमको बताया, वो दोनों इतने खुश हो गए कि यहाँ की हॉस्पिटैलिटी तो देखो कितनी अच्छी है, यहाँ के लोग तो देखो कितने अच्छे हैं। देखो वो इतने बड़े, इतने बुजुर्ग मधुबन निवासी, बहुत पुराने भाई, लेकिन उठ के किसी को शक्कर ऑफर करके चले जाना कितनी अच्छी बात है। तो कि कुछ बोलने की जरूरत पड़ी उनको? नहीं, कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं किया, चम्मच और वो देके वहां से चले गए। तो ये धारणाएं हैं जो हमारा स्पिरिचुअल रेनकोट तैयार करती है ना। तो इस तरह से ज्ञान, योग, धारणा। चौथा है सेवा। तो सेवा में भी बहुत टकराव होते हैं, तो उस टाइम पर भी बहुत अटेंशन से हमको हमको काम करना है कि सेवा में हमको एडजस्ट होने आना चाहिए। जैसे कल की मुरली है ना, उसमें बाबा ने एडजस्टमेंट की बात की है और बाबा ने कहा है कि आपको ही बदलना है, मुझे बदलना है, ये नहीं सोचो कि दूसरा बदले, हमको ही बदलना है। बाबा ने कल की मुरली में सहनशीलता का पाठ पढ़ाया है। तो सेवा में सहनशीलता, सेवा में दूसरे दिव्य गुण, एडजस्टिंग नेचर, सहयोग की भावना, ये सब होना चाहिए, तब हमारा ये स्पिरिचुअल रेनकोट तैयार होता है। तो स्पिरिचुअल रेनकोट का मटेरियल था ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। अब ये जो रेनकोट है स्पिरिचुअल रेनकोट, ये हमको माया के नेगेटिव वाइब्रेशन से बचाता है, व्यर्थ संकल्पों से बचाता है, हमको शक्तिशाली बनाता है ना। तो अभी इसमें कौन से टाइप के रेनकोट्स होंगे? तो सबसे पहला रेनकोट है डिवाइन वर्च्यूज, जो हमारे दिव्य गुण है, हमारी जो वैल्यूज है उससे ये रेनकोट तैयार होता है ना। तो जैसे कि एक एक्टिविटी करें हम, अभी कम लोग हैं इसलिए कर सकते हैं, ठीक है। हम ओआरसी गए थे एक बार, तो उधर एक एक्सरसाइज करवाई थी हमको, उसमें क्या किया था, 5 चेयर्स बीच में रखी थी और उस पे लिखा था काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और बाकी सारी चेयर्स ऐसी गोल रखी हुई थी जिसपे सारे दिव्य गुण लिखे हुए थे, और म्यूजिक बजता था और म्यूजिक में हम सबको बोला गया चलो, और जैसे ही म्यूजिक स्टॉप हो जाएगा अपनी अपनी चेयर पे बैठ जाओ। सबको मिल जाती थी चेयर, लेकिन 5 लोगों को वो विकार वाली चेयर मिलती थी, ठीक है। तो वो लोग बीच में बैठते थे और फिर उसके बाद एक को उठाया जाता था, जैसे क्रोध को उठाया, तो क्रोध को उठाया और पूछा, फिर पूछते थे अच्छा क्रोध है तो क्रोध क्या है, वो पूछते थे। उसके बाद पूछा जाता था कि क्रोध को जीतने के लिए कौन से दिव्य गुण चाहिए, तो क्रोध को जीतने के लिए कौन से दिव्य गुण चाहिए। तो हम अभी एक एक करके ये करेंगे, आप लोग सोचना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रोध लेते, तो अगर किसी को, किसी के अंदर क्रोध बहुत आ रहा है, उसको बहुत क्रोध आता है, उसको पता है कि मैं इसको जीत नहीं पा रहा हूं, तो अभी एक तरीका है कि कौन से दिव्य गुणों से मैं इस क्रोध को जीत सकता हूं। सहनशीलता, साइलेंस पावर, शांत स्वरूप, और धैर्यता, और मधुरता, हर्षित मुक्ता। अच्छा, बाबा ने बोला है कोई क्रोध करेगा तो मुस्कुराओ, अभी अभी आया था ना मुरली में, नम्रता, और अच्छा अभी 6-7 गिनाए। अब इसमें से कुछ दो निकालो, दो इम्पोर्टेंट चीज जो है ना क्रोध को जीत सके, सहनशीलता। कौन कौन सहनशीलता के लिए, कितने लोग सहनशीलता, काफी लोग है ना, सहनशीलता और नम्रता, शांत और गुण, दिव्य गुण, नम्रता एक है, हर्षित मुक्ता, समाने की शक्ति, गुण 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 चाहिए, सहनशीलता तो एक हो गया, सबने अग्री किया, और जो आप लोग बोलेंगे सही है, लेकिन एक बोलो ना, कम से कम दो निकालेंगे हम, एक विकार के लिए दो निकालेंगे, तो एक सहनशीलता हो गया, दूसरा मधुरता, वही प्रेम के साथ मतलब मधुरता, तो अगर क्रोध को जीतना है तो इन दो गुणों पे काम करना पड़ेगा। ऐसे ही अपने आप को चेक करना, कौन सा ऐसा विकार है या कौन सी ऐसी मेरी आदत है जो चेंज नहीं कर पा रही मैं, उसको कौन से दिव्य गुणों की लिस्ट लेके भी बैठ सकते हम, कौन से दिव्य गुण है जिससे मैं इस क्रोध को जीत सकती हूँ। ठीक है, अभी सेकंड है ईर्ष्या। अगर ईर्ष्या आ रही है, किसी को जेलसी हो रही है, किसी से कोई आगे जा रहा है, बहुत ईर्ष्या हो रही है मुझे, तो कौन से दिव्य गुणों पे काम करेंगे? दिव्य गुण याद है ना सब, प्रेम। कैसे जीतेंगे ईर्ष्या को? ईर्ष्या आ रही है मुझ में तो क्या चिंतन करेंगे? अपनापन, शुभ भावना, गुड विशेष। अच्छा, और शुभ भावना रखेंगे सामने वाले के लिए, सामने वाला आगे जा रहा है उसको आगे जाने दो, मैं भी जाऊंगा आगे, और शांत स्वरूप, गुण गुण, नम्रता, सरलता। हाँ, ये आ सकता है कि अगर कुछ भी सिचुएशन हो रही है जिसमें कोई आगे जा रहा है ना, तो तभी होती है ना कंपटीशन की भावना, जहाँ कंपैरिजन की भावना आती है तब जेलसी आती है, तो एक हो सकता है कि सरलचित रहो, फ्लेक्सिबल रहो, एडजस्टिंग रहो कि ठीक है वो, और न्यारापन, ओके, डिटैचमेंट, न्यारापन भी हो सकता है कि हाँ जी, साक्षी भाव, हाँ साक्षी भाव भी हो सकता है। तो जेलसी अगर आएगी तो हम इन गुणों पर काम कर सकते हैं। फिर तीसरा काम, क्रोध, लोभ, लोभ आ रहा है बहुत, संतुष्टता, वेरी गुड, इच्छा मात्रम अविद्या, ये गुण था ना, संतुष्टता, अगर सेटिस्फाइड रहना है, संतुष्टता, कंटेंटमेंट, तो इस विकार को जीत सकते हैं। तो इस गुण पे काम करना, हम सिर्फ गिना रहे लेकिन काम आप लोगों को करना है जाके, कि अगर ये चीज है मुझ में तो अब इस गुण के बारे में पढ़ो, है ना, हमारी बुक है जगदीश भाई जी की, दिव्य गुणों का गुलदस्ता, उसमें वो बुक को निकालो, उसमें से पढ़ो, तो पता चलेगा कि कैसे गुणों पे काम करना है ना। अगर किसी से अटैचमेंट है तो मोह है, तो नष्ट मोहा, और नष्ट मोहा रहेंगे ना, डिटैच, डिटैचमेंट भी एक दिव्य गुण है, नष्ट मोहा। तो ये सारे, तो ये जो दिव्य गुण है ये हमारा स्पिरिचुअल रेनकोट बनाते हैं, तो दिव्य गुणों की धारणा है ना। सेकंड है, रेनकोट जो होते हैं ना, लोग अलग अलग कलर्स में पहनते हैं, अलग अलग फैशन करते हैं, उसमें देखा होगा ना, अलग अलग साइज के आते हैं, तो अब हमारे स्पिरिचुअल रेनकोट में क्या फैशन करेंगे हम? नहीं, क्या करेंगे स्पिरिचुअल रेनकोट के लिए, क्या है, जैसे वहां पे डिजाइन है, वहां पे कलर्स है ना, तो हमारे लिए क्या है?
अपने को ज्ञान की एंजल
समझ, फरिश्ता। तो जैसे कि हमारे पांच स्वरूप है ना, तो ये हमारे लिए फैशन है, पांच स्वरूप, तो कभी देवता बन जाएंगे, कभी फरिश्ता बन जाएंगे, कभी पूज्य स्वरूप में है ना, कभी परम धाम में, कभी ब्राह्मण आत्मा, तो ये जैसे कि हमारे अलग 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 स्पिरिचुअल रेनकोट्स है। हाँ, करी निराकारी साकारी, तो ये हो गया फाइव फॉर्म्स। दूसरा स्वमान है ना, कितने सारे स्वमान दिए बाबा ने, एक मुरली में बाबा ने कहा था ना कि स्वमान तुम्हारी ड्रेस है, सवेरे से लेके शाम तक इस ड्रेस को चेंज करते रहो, है ना। जैसे सत्युग में कैसे होगा ना, सुबह में उठेंगे तब अलग ड्रेस, फिर जब सभा में बैठेंगे तब अलग ड्रेस, गार्डन में जाएंगे तो कुछ अलग, पुष्पक विमान में जाएंगे तो कुछ अलग, तो इसी तरह से संगम युग पर हमारे स्पिरिचुअल रेनकोट जो है वो है स्वमान। तो हर हर कर्म में स्वमान को जोड़ सकते हैं, या तो फिर हर घंटे कोई स्वमान, या तो दिन में कोई एक स्वमान लेके उस पर चिंतन करना, तो ये कर सकते. तो स्वमान है हमारे. और जैसे कि बाबा हमेशा कहता है कि चमकीली ड्रेस, फरिश्ते की चमकीली ड्रेस पहनो, वो कर सकते. दूसरा जैसे कि पूज्य स्वरूप को ले लो आप, है ना. अभी अलग अलग फेस्टिवल आते हैं, तो अलग अलग फेस्टिवल में अलग अलग ड्रेस पहनते लोग. तो हमारे लिए अलग अलग फेस्टिवल में जैसे वो लोग हमको पूछते हैं ना, जैसे अभी गणेश चतुर्थी था, तो तभी कौन सा स्पिरिचुअल रेन कोट पहनने का, तभी गणेश बन जाने का. हाँ, विघ्न विनाशक गणेश हूं मैं, सिद्धि स्वरूप, तो वो वाला रेन कोट पहनने का वो टाइम पे. अभी क्या आएगा, नवरात्रि है ना, तो तभी वो दुर्गा पूजा वो सब होगी ना, है ना, अष्ट शक्तियों की. तो वो टाइम पे वो बन सकते हैं, वो वाले स्पिरिचुअल रेनकोट पहनेंगे वो टाइम पे. ऐसे हर, फिर दिवाली आएगा, दिवाली में लक्ष्मी की पूजा होगी, तो तभी हम लक्ष्मी बनो. तो ऐसे अलग 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 मंथ में अलग अलग रेनकोट्स पहन सकते हैं, स्पिरिचुअल रेनकोट्स, तो अलग अलग कलर के. तो ये अलग अलग कलर, देखो कलर मेडिटेशन भी कराते कोई भाई बहने, है ना, तो वो भी कर सकते हैं कि प्योरिटी की व्हाइट किरने, शक्ति की रेड किरने, ऐसे अलग अलग जो भी है वो कर सकते हैं कि लव के ये वाइब्रेशंस, तो वो वाला स्पिरिचुअल रेनकोट पहन के निकल सकते हैं, तो ये कर सकते हैं. तो ये दूसरा हो गया. तीसरा, रेनकोट जब पहनते तो उस पर हुड होता है ना, कैप, तो वो कैप है ना. तो हमारे स्पिरिचुअल रेनकोट में क्या हुड है, क्या कैप रहेगा, बाबा की छत्र छाया. तो हमारा स्पिरिचुअल रेनकोट बाबा की छत्र छाया है, तो वरदानी हाथ बाबा का हमारे सिर पर है. तो हम एक योग का प्रयोग कर सकते हैं इसमें, कि परमधाम से बाबा नीचे आ गए और बस एक फुट पे ऊपर है, और बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही है, और जैसे कि छत्र छाया बन गई है. दिन में कम से कम अगर ये 3-5 बार भी करेंगे ना, तो बहुत अच्छा लगता है. और या कभी कभार ऐसे करो कि दिन में 11 बार इस चीज का अभ्यास करेंगे, या दिन में 21 बार इस चीज का अभ्यास करेंगे कि बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, या बाबा छत्र छाया है, या बाबा सूक्ष्म वतन से बाप दादा मेरे सामने आ गया, बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है. हम कर्म करते टाइम पे, हाँ, हम बहुत बिजी है अपने अपने ऑफिस में, अपनी अपनी जगह पर, और फिर बाबा ने अपना हाथ सिर पे रख दिया और कहा कि बच्चे तुम मेरे हो, विजयी भव, मास्टर सर्वशक्तिवान भव, ऐसे बहुत प्यार से उसको याद करना. तो ये हो गया हुड, कैप. तो चौथा है टाइप ऑफ रेनकोट, एक होता है आत्माभिमानी स्थिति, है ना, देही अभिमानी स्थिति. ये हमारा बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल रेनकोट है. तो जैसे कि हम सबको एक अनुभव होगा कि अमृत वेला अगर कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, और दिन भर में हमारे प्रॉब्लम कोई सामने आती है, तो अमृत वेला हम उससे बहुत अच्छे से लड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि बीज रूप स्थिति का अभ्यास होता है उस टाइम पे. तो जो भी चीज होती है ना, परिस्थितियां, वो बहुत हल्की लगती है हमको. तो उसी तरह से दिन भर में हम स्पिरिचुअल रेनकोट को, देही अभिमानी स्थिति, ये बार बार इसका अभ्यास करने की कोशिश करें, तब जाके दिन में कोई भी ऐसी छोटी छोटी बातें होगी तो हम उसको लेट गो करेंगे, वो इतनी बॉदर नहीं करेंगी हमको, ऐसे चीटी समान लगेगी वो. तो ये एक चीज है कि देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना. इसलिए जो अब आप मधुबन में हो, तो आपको हर घंटे यहाँ पर गीत सुनने आता है. बाहर जो भाई बहने होते हैं उनको तो नहीं होता, फिर भी वो लोग अपने मोबाइल पर रखते हैं, है ना. तो ये अभ्यास कर सकते हैं कि हर घंटे में जो गीत बजता है उस पर अपने आप को आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करना. तो ये हो गया सोल कॉन्शियस स्टेज. फिर होता है एक टाइप का रेनकोट है दुआएं. ब्राह्मण परिवार की दुआओं से ये रेनकोट बनता है ना. किसी के लिए कुछ अच्छा कर देते तो दुआ देके जाता है ना वो. तो ऐसे ही अगर कोई गाइड सेवा में है, या अगर कोई भोजन परोसने की सेवा में है, तो प्यार से बात करना, या मुस्कुराते हुए बात करना, तो दुआ मिलती है ना. बड़ी दादी जी कहते थे कि वो जो एयरोस्ट्रेस होती है ना, वो झूठी स्माइल देती है ना, ऐसे स्माइल करते वो लोग, है ना. तो वो एक सेकंड की स्माइल करती है, तो हम लोग भी स्माइल करते हैं. जब कोई अपने को स्माइल करता है तो अपन भी करते हैं. तो वैसे ही अगर आप सिक्योरिटी की सेवा पे हो, या परोसने की सेवा पे हो, या आप गाइड सेवा पे हो, तो स्माइल करते हुए बात करो, तो भी है ना उनको बहुत अच्छा लगता है. तो भी उनको लगता है कि मतलब ये तो सचमुच एंजल्स ही है यहाँ पर, है ना, सचमुच फरिश्तों की दुनिया में आ गए. तो तब भी हम सेवा कर सकते हैं वो चीज से भी, जैसे हम पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं ना, तो हम भी कोशिश करते कि है ना जितना उनसे प्यार से बात करें, जितना उनसे स्माइल से बात करें। वो तो बहुत बहुत अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं ना, तो उस तरह से उनसे व्यवहार करना, हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना, बड़ी से बड़ी बीमारी में भी कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा वो बताना। तो ये हो गया दुआएं। फिर है डिटैचमेंट, अटैचमेंट नहीं डिटैचमेंट, साक्षी रहना, है ना। तो जैसे कि व्यक्तियों से, परिस्थितियों से साक्षी रहना, हम हमारा एक्सपीरियंस बताएंगे। और इसमें कर्मा फिलॉसफी भी आती है कि 2 महीने पहले हमारी जो नीस है, हमारी बहन की जो लड़की है, और हमारे जो मामा हैं, उन दोनों को कैंसर डायग्नोज हो गया, और एक ही हफ्ते में। अब वो 9 साल की, अच्छा ये जो थे ये स्मोकिंग करते थे, तो इनको लंग कैंसर डायग्नोज हुआ, और हमको फोन आया कि ऐसा ऐसा हुआ है और ये रिपोर्ट्स आई है, और इस बच्ची का भी ऐसा हुआ है, और बोन मैरो करते ना वो था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमको बोला बोन मैरो बहुत अच्छा है, शाम तक हमको बोला बोन मैरो अच्छा नहीं है, उसमें कुछ अबनॉर्मल है। तो हमने तुरंत रात की फ्लाइट बुक की। लेकिन अभी देखो डिटैचमेंट, हमारा मोह कैसा होता है लोगों से लौकिक, अरे तो मेरा तो ज्ञान, जैसे कि मैं बोला ये क्या हो रहा है बाबा, ये तो ज्ञान इवोपरेट हो रहा है ना, याद कर रही हूँ मैं ड्रामा के पॉइंट्स, वो आत्मा है उसकी, उसके कार्मिक अकाउंट्स है, और नहीं फिर भी बुद्धि में आ रहा है, नहीं वो तो 9 साल की है, ऐसे कैसे हो गया, मेरी बहन अभी कैसे जिएगी, ऐसे सारे पॉइंट्स। फिर हमने फ्लाइट बुक करी और सुबह में हमको निकलना था। तो देखो अभी स्पिरिचुअल रेनकोट का फर्स्ट मटेरियल था ज्ञान, है ना। तो हमने क्या किया, स्पार्क की हमारे पास ड्रामा की बुक थी, तो हमने वो बुक उठाई और यहाँ से उदयपुर एयरपोर्ट जाना था हमको, हम बस वो बुक के साथ ही बैठे, और हमको 12 बजे ऑन द वे कन्फर्म होने वाला था कि क्या डायग्नोसिस है, उसका कन्फर्म नहीं था। और हम बस वो पढ़ते गए, एक एक पॉइंट पढ़ते गए और उस पर चिंतन करते गए, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारा कोई अटैचमेंट हो और हमारी स्थिति गिर जाए, हमको सपोर्ट बनना था उन लोगों के लिए। तो हम ड्रामा की पॉइंट्स पढ़ते 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 स्थिति इतनी अच्छी हो गई, और फिर 12 बजे कॉल आया, और हमने एक्सपेक्ट किया था, 4 टाइप के कैंसर होते वो ल्यूकेमिया में, तो उसमें से जो क्योरेबल टाइप होता है ना वो निकला। तो हमने बोला बाबा थैंक यू, अब मैं जवाब तो दे सकती हूँ ना जाके उनको, क्योंकि इतनी फैमिली को 2 लोगों के बारे में बताना कि ये ऐसा कैंसर है ये ऐसा है, तो यहाँ पर बाबा का ज्ञान कितना हेल्प करता है। तो ये स्पिरिचुअल रेनकोट का जो मटेरियल ज्ञान था वो कितना इम्पोर्टेंट प्ले किया यहाँ पे, और जो डिटैचमेंट है और जो कर्मा फिलॉसफी है कि हाँ अभी उसका ट्रीटमेंट चलेगा, ऑब्वियसली वो बच्चे को बहुत सारे प्रिक्स होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी 3 साल में, है ना, जो भी कुछ होगा, लेकिन वो आत्मा अपना हिसाब किताब लेके आई है। तो ये चीज ने बहुत हेल्प किया वो टाइम पर। तो कर्म फिलॉसफी का ज्ञान ये दिन भर में हमको हेल्प करता है, तो ये हमारे स्पिरिचुअल रेनकोट को शक्तिशाली बनाता है, तो इसको भी याद रखना। नेक्स्ट है नियम और मर्यादाओं में अपने आप को बांध के रखना पूरा दिन भर, जितने भी हमारे नियम हैं मर्यादाएं हैं उनमें, उन पर चलना, उन पर अपने आप को बांध कर रखना, तब ये रेनकोट सेफ रहेगा, तब ये रेनकोट शक्तिशाली रहेगा कि हाँ मॉर्निंग में उठेंगे तो अमृत वेला करना है, फिर उसके बाद मुरली क्लास करनी है, और सबसे प्यार से बात करनी है, किसी को दुख नहीं देना है, 5 टाइम ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, शाम का योग कर रहे हैं, भोजन बाबा की याद में कर रहे हैं, ये सारी चीजें, प्योरिटी की धारणा, ये सारी चीजें हमारी बुद्धि में हमको याद रहनी चाहिए दिन भर। फिर लास्ट है बाबा से प्यार का संबंध जो है ना हमारा, तो जैसे कि स्वच्छता, बाबा को कौन से बच्चे अच्छे लगते हैं, जो सच्चे बच्चे हैं। कुछ दिन मुरली में पॉइंट था बाबा का, बाबा सत्य है ना, और बाबा सच्चा है और सत्य दुनिया की स्थापना करता है, लैंड ऑफ ट्रुथ, सच्ची दुनिया की स्थापना कर रहा है, तो उसको सच्चे बच्चे अच्छे लगते हैं। तो जितना हम सच्चे रहेंगे उतना बाबा को अच्छे लगेंगे। तो जैसे कि कुछ दिन पहले हमने एक टॉपिक लिया था सत्यम शिवम सुंदरम, है ना, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो बाबा को उस रूप में देखना, उस सुंदर रूप में देखना, तो भी हमारा बाबा से प्यार बहुत बढ़ता जाता है, और ये प्यार वाला फिर स्पिरिचुअल रेनकोट तैयार होता है। तो हम कभी कभार एक प्रयोग करते हैं अमृत वेला के बाद, हम क्या करते हैं बाबा मिलन में, जो बाबा होता है ना हव्यक बाप दादा स्टेज पर, और जो लास्ट में जब दादिया स्टेज पर चढ़ते हैं, उस सीन को जस्ट अभी इसी वक्त सामने लाओ और देखो उस बाबा को सामने, और देखो उसकी आंखें, हाँ उसकी वो गीली गीली आंखें और वो हमारी तरफ देखता है, इतने प्यार से देखता है। बाबा देखो जो स्टेज पर चढ़ रहा होता है उनको भी नहीं देखता, हम सबको ऐसे ऐसे देखता रहता है वो, और उसके जेस्चर्स बहुत कम होते हैं, बाबा मूव बहुत कम करता है, लेकिन है ना बाबा कुछ कुछ ऐसे एक्शन कर देता है, जैसे मुनि बहन जी से हाथ मिलाएगा तो हमसे भी ऐसे 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 करेगा, कभी ऐसे 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 करेगा। ये सारी चीजों को याद करने से ही देखो आप लोगों के चेहरों पे भी स्माइल आ रही है अगर याद करने से, तो सोचो अगर बैठ के उसको डीपली याद करें तो कितना मजा आता है। और जब वो बाबा स्माइल करता है ना, तो ऐसा लगता है दुनिया में इससे ब्यूटीफुल चीज तो और कोई है ही नहीं। तो उस प्यार को याद करना, उस मीटिंग को, हम सब नीचे बैठ के इतना अनुभव कर सकते हैं वहां पर बैठ के। तो जब बाबा मिलन खत्म भी हो जाता है ना, तो उसको अपने साथ लेके जाना, उसको वहीं छोड़ के नहीं चले जाना डायमंड हॉल में, उसको लेके जाना, और उसको एवरीडे एटलीस्ट एक बार अगर इस चीज को याद करते ना, तो हमने तो एक्सपीरियंस किया है कि आंखों में आंसू आते हैं जब हम उस चीज को इमर्ज करके याद करते हैं कि इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है हमसे। देखो हम कितनी गलती करते हैं दिन भर में, कितनी गलती हो जाती, कितनी मिस्टेक्स हो जाती हमसे, फिर भी बाबा हमको सेकंड चांस देता है ना, फिर भी हम अमृत वेला रेगुलर आते हैं, फिर भी हमारा ज्ञान योग अच्छा चलता है, सब कुछ करता है वो हमारे लिए, क्यों करता है? कभी कभार हम पूछते क्यों करते हो हमसे इतना प्यार बाबा, कि है ना ये हम मिस्टेक भी कर रहे हैं, हम कभी कभार जोर से भी बोल दे रहे हैं, लेकिन हम आपके प्यार की कमी महसूस नहीं करते, हमको जो चाहिए हमको वो मिल जा रहा है, क्यों ऐसे? तो ये जब चीजें याद करते हैं ना, तो एक बहुत अच्छा रेनकोट स्पिरिचुअल तैयार होता है। तो ये स्पिरिचुअल रेनकोट। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम बारिश में रेनकोट पहन के जाते फिर भी कभी कभार हम गीले हो जाते, ऐसा क्यों होता है? कब गीले होंगे रेनकोट पहनने के बाद भी? ठीक तरह से पहना नहीं और फटा हुआ, तो लीकेज एक है, लीकेज अगर होंगी उसमें तो। और कैसे लीकेज हो सकती है? अगर व्यर्थ संकल्प, हाँ वो तो हम देखेंगे अभी, जैसे लौकिक में देख रहे क्या करते हैं, तो प्रैक्टिकल में फिर, तो जैसे कि अगर किसी का साइज है एक्सेल और किसी ने पहन लिया स्मॉल साइज, तो फट जाएगा ना रेनकोट, तो लीकेज होगी। अगर उसको रफ एंड टफ यूज किया रेनकोट को, तो भी रेनकोट फट जाएगा। अच्छा अलमारी में आपने 2-3 साल तक उसको ऐसे ही डम कर दिया, रेनकोट पर रख दिया, तो उसमें क्या हो जाता है? कुछ कुछ कीड़े बैठ जाते, कुछ कुछ बैक्टीरिया बैठ जाते रेनकोट में। ठीक है, तो ये हो गया फिजिकल रेनकोट। अब हमारे स्पिरिचुअल रेनकोट पे आ जाओ, तो ये स्पिरिचुअल रेनकोट में ये कौन से बैक्टीरियाज है जो बैठ जाते? स्पिरिचुअल रेनकोट है ना, उसमें भी कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसे बैठ जाते जिसकी वजह से हमारा स्पिरिचुअल रेनकोट खराब हो जाता है। हाँ अलबेलापन, बहुत अच्छा, हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कभी कभार आलस से अलबेलापन आ जाता है ना, जाने दो ना आज, क्यों जाना अमृत वेला, इतनी बारिश हो रही है, रूम पे बैठ के करते हैं ना ऐसे, तो एक दिन नहीं करेंगे, 2 दिन नहीं 3 दिन माया सुला देगी हमको ठंडी में, तो वैसे होता है। फिर कभी है ना रात में थक गए, जैसे हमारा कैसे होगा, चलो इमरजेंसी था, बाबा को तो पता है ना रात में जागे थे, इमरजेंसी था, जाने दो, अगर हमने ऐसे कर दिया तो फिर गया अमृत वेला, तो ये आलस से अलबेलापन आना, तो ये एक बैक्टीरिया है, एक जंतु है। दूसरा कल की मूली बहुत अच्छी है, उस कल की मूली में बाबा ने जैसे कि आत्माओं के लिए आत्मा की बीमारियों को गिनाया है, तो सबसे पहले बाबा ने कहा कि जैसे कि बीमारी, अगर बीमारी आ जाती है तो बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं कि कितना शरीर बेकार है बाबा, ये कैसा पुराना शरीर है ना, और है ना दुखी होते हैं, लेकिन बाबा ने क्या कहा कि अगर शरीर बीमार हो तो मन पे असर ना पड़े, है ना। बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी कहते थे, एक बहन बाबा के सामने गई और कहा कि बाबा मेरा पेट बहुत दुख रहा है, तो बाबा ने कहा तुम्हारा पेट दुख रहा है ना, तो तुम्हारे चेहरे पर क्यों आ रहा है वो, है ना, तो तुम्हारे चेहरे के जो चिन्ह वो नहीं बदलने चाहिए। तो इसी तरह से बाबा ने कल की मुरली में कहा है कि अगर शरीर बीमार है तो मन पर उसका असर ना पड़े, और बाबा को बाबा के गुणों के गीत गाओ तो बीमारी खत्म हो जाएगी। बाबा ने देखो इलाज दिया है, कल की मुरली बहुत ध्यान से सुनना, तो बीमारी खत्म हो जाएगी बाबा ने कहा। और रहना इस शरीर में, इस शरीर की वाहवा करनी है कि इस शरीर में मैं बाबा से वर्षा ले रही हूँ, इस शरीर में मैंने भगवान को पहचाना, तो बलिहारी इस शरीर की, है ना, इतनी अच्छी वाक्य है उसमें। सेकंड बाबा ने जैसे दर्द हो रहा है, अगर शरीर में कहीं दर्द हो रहा है तो दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, हम ऐसे करते हैं ना, तो बाबा ने कहा आप कोशिश करते हो मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन बाबा ने कहा इससे अच्छा क्या करो, खुशी खुशी को लेके आ जाओ तो दर्द खत्म हो जाएगा। तो देखो ये भी दवा बता दी, अगर किसी को सिर दुख रहा है, पाँव दुख रहा है, पेट दुख रहा है, तो खुशी में आ जाओ, क्योंकि जब हम खुशी में होते हैं ना तो हमारी बॉडी में ऐसे कोई हार्मोन सिक्रीट होते हैं, हमारे ब्रेन में रिसेप्टर्स में ऐसे कुछ डोपामिन सिक्रीट होता है, जिससे जैसे मेडिटेशन में होता है ये सब, तो उससे ये सारी दर्द खत्म हो जाएंगे। तो दर्द के बारे में तीसरा बाबा ने कहा कि बच्चों को सोचने की बहुत आदत है, ये सोचना भी जो ना बहुत सोचते हैं, ये भी एक बैक्टीरिया ही है, बहुत सोचते और सोचते हैं ना तो उसका असर फिर हमारे शरीर पर पड़ता है, तो सोचने को खत्म करो बाबा ने कहा। और जो परिस्थिति आती है उसके लिए क्या कहा कि परिस्थिति आती है शांति का पाठ पढ़ाने, परिस्थितियां आती है आपको एकरस स्थिति का पाठ पढ़ाने। परिस्थितियां जब आती है तो ऐसे नहीं कहो क्यों आई है, लेकिन ऐसे ऐसे सोचो माया को बाबा ने कितना प्रेज किया है कल की मूली में, एक पैराग्राफ है पूरा जहां बाबा कह रहा है कि माया को सहयोगी समझो, माया को सहयोगी समझो। और फिर एक एक पैराग्राफ में बाबा ने कहा अपसेट होते हैं ना, ये अपसेट होना मूड ऑफ होना भी तो बैक्टीरिया है जो स्पिरिचुअल रेनकोट को खत्म करता है। तो बाबा ने कहा अपसेट क्यों होते हो, अपसेट होते हैं कि ब्राह्मण परिवार ऐसा है। तो बाबा ने कहा ये ब्राह्मण आत्माएं तुमको धर्मराजपुरी में से जाने के लिए बचाएगी, ये ब्राह्मण आत्माएं हिसाब किताब चुकतू करने आई है, ब्राह्मणों का ब्राह्मणों से ही चुकतू होगा, तो धर्मराजपुरी से बचाने के लिए हम सब एक साथ है एक दूसरे के लिए। कितनी वंडरफुल पॉइंट्स है कल की मूली में, तो ऐसे अलग अलग मूली में पॉइंट्स है। और जेलेसी ईर्ष्या पे बाबा ने कहा कि ईर्ष्या किससे होती है, हम शरीक से, कहे ना हम शरीक कंपेरिजन की भावना आती है, वो आगे बढ़ रहे होते हैं हमको अच्छा नहीं लगता तो ईर्ष्या आती है, कंपेरिजन होता है, हम अपने स्वमान से नीचे गिरते और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आते है ना। तो बाबा ने वहां पर भी कहा कि ईर्ष्या क्यों करते हो, है ना, ऐसे नहीं सोचो। बाबा ने उस आत्मा को उस पोजीशन पे बिठाया तो निमित्त बनाने वाला कौन, वो तो देखो ना, उसको वो हम सोचते उसको उधर बिठाया मुझे इधर बिठाया, नहीं, निमित्त बनाने वाला कौन है ये सोचो। अच्छा फिर बाबा ने कहा उसकी विशेषताओं को देखो, विशेषताओं को देखो तो रीस खत्म हो जाएगी और रेस करोगे, रेस हेल्दी है, रीस जो है वो ईर्ष्या है, तो उसकी विशेषताओं को धारण करो। तो ये ईर्ष्या भी एक है जो एक कीटाणु है जो स्पिरिचुअल रेनकोट को हमारे खत्म कर देता है। फिर है कुसंग, आज की मूली में भी शायद है, संग दोष में आकर बच्चे चले जाते हैं बाबा को छोड़ के, तो संग दोष से बचना है, तब नहीं तो ये स्पिरिचुअल रेनकोट खराब हो जाएगा। हम सोच रहे थे संग दोष और क्या क्या है, तो हमारा जो ये मोबाइल है ना इसको भी बहुत संभाल के यूज करना है, कभी कभार ये भी बैड कंपनी है ना, कोई कोई व्हाट्सएप पे लगे रहते तो लगे रहते हैं। दो दिन पहले एक पेशेंट आया, हमने उनसे कहा कितने बजे सोते हो, तो बोले लेट हो जाता है एक दो घंटा, एक बज जाता है सोने को। तो मैंने कहा क्यों, तो बोले अभी मोबाइल है व्हाट्सएप है तो एक दो घंटा और आगे हो ही गया है ना, मतलब उसको ग्रांटेड लिया है कि देखो व्हाट्सएप है तो लेट तो सोएंगे ही, तो किस तरह से ये रेनकोट हमारा खराब होता है। नेक्स्ट है, अच्छा अगर हमको ये रेनकोट को अच्छे से रखना है, अभी फिजिकल रेनकोट पे आ जाएंगे, अच्छे से रखना है तो हम कैसे रखते हैं, वो कबर्ड में हम रखते हैं ना, नैप्थलीन बॉल्स रखते हैं ना, तो रेनकोट को भी अगर संभाल के रखना है तो प्रिजर्व के लिए नैप्थलीन बॉल्स यूज करते हैं। तो अब स्पिरिचुअल रेनकोट को बचाने के लिए ये नैप्थलीन बॉल्स क्या है, क्या होगा, तो हमने जैसे सोचा क्योंकि टाइम नहीं हमारे पास ज्यादा, नैप्थलीन बॉल्स वो है कि रोज की मुरली या रोज को ज्ञान, कि रोज का जो ज्ञान हम सुनते हैं या पढ़ते हैं उस पर डिस्कशन करना, उस पर चिंतन करना, रोज करना पड़ेगा। देखो वो नैप्थलीन बॉल कंटिन्यूसली वहां रहता है ना, इसलिए रेनकोट या हमारे कपड़े जो कबर्ड में होते हैं वो अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पर भी ज्ञान को चिंतन करना, ज्ञान का चिंतन करना, ज्ञान का डिस्कशन करना, जैसे आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि ये रात की क्लास होती है 8:30 से 9:30, आप लोग ज्ञान की डिस्कशन, ज्ञान की चर्चा में ही होते हैं, तो ये एक हो गया। दूसरा कि योग जो हम करते हैं उसमें क्रिएटिविटी लाना है ना, नहीं तो क्रिएटिविटी लाना मतलब रचनात्मक लाना, उसमें कुछ ना कुछ अलग अलग प्रयोग करके योग करना, तो वो भी एक नैप्थलीन बॉल का काम करेंगे। दूसरों के अनुभव पढ़ना, कोई कोई बुक्स है हमारे पास, वो दूसरों के अनुभव सुनने से भी हमको बहुत अच्छा लगता है ना. हमारे पास इतनी सारी लिटरेचर है, उसमें आदि रत्नों की बुक्स है और प्रभु परवाने हैं, उसमें इतने अच्छे अच्छे अनुभव है. या तो ज्ञान अमृत, हमारी एक नर्स है हॉस्पिटल की, वो सिर्फ ज्ञान अमृत पढ़ती है, और जब वो ज्ञान अमृत के में से ऐसी ऐसी चीजें सुनाती है ना, इतना अच्छा लगता है. कुछ निमोनिक सुनाएगी, कुछ है ना कविता सुनाएगी, बस वो पढ़ के आती है और याद कर देती. वो इंग्लिश जानते भी नहीं हाँ, लेकिन है ना उसको इतने अच्छे से सुनाएंगी कि सबको इतना अच्छा लगता है सुन के, सबको बहुत मजा आती है. तो ज्ञान अमृत पढ़ते, तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास लिटरेचर है, उसका हम अध्ययन कर सकते हैं. तो ये जैसे कि नेफ्थलीन बॉल्स है, जिसको हम कंटिन्यूसली करें. दूसरा एवरीडे दिनचर्या. आज की मुरली का वरदान क्या था, बाबा ने कहा कि टाइम टेबल सेट करो, है ना, दिनचर्या. एक मिनट, दिनचर्या सेट करो तो आपका सब कुछ अच्छा रहेगा. ऐसे ही चार्ट लिखना, तो ये नेफ्थलीन बॉल्स है. और लास्ट में जैसे कि हमने कहा रफ एंड टफ अगर यूज करते तो खराब हो जाता है रेनकोट, तो वैसे ही अगर कोई 2 बजे उठ रहा है तो हम भी 2 बजे उठे और अपनी सेटिंग ना ठीक करें तो ये रेनकोट फट जाएगा. ऐसे ही लाइफस्टाइल अगर हमारी ठीक नहीं है तो भी हमारा ये रेनकोट खराब हो जाएगा. तो ये स्पिरिचुअल रेनकोट है. सबसे इम्पोर्टेंट 5 बातें हर मॉर्निंग में इस रेनकोट के लिए याद रखना. एक तो सहनशीलता, जो हमारे साथ दिन भर चले. एक सरलता, फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टिंग पावर रहे हम में. और तीसरी है हमारी प्योरिटी, पवित्रता को पूरा दिन भर इस पर अटेंशन रखना. चौथा है कि झुक कर चलने की आदत डालना, है ना. झुक कर चलेंगे तो टकराव नहीं होगा. और पांचवा जो कैप है, हमारा हुड है, वो बाबा की छत्र छाया है. तो ये है स्पिरिचुअल रेनकोट. ठीक है, ओम शांति.
बस दो.